श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 18 श्लोक संख्या 24 वक्ता हिज ग्रेस कुमदास प्रभु
चढ़ाते थे कृष्णाम कृष्णाम भगवान भगवान श्रीदामनम आपने भक्त तथा मित्र श्रीदामा को पराजित हारकर वृषभम वृषभ को भद्रसेन भद्रसेन तू तथा प्रलंब प्रलंब रोहिणी सुतम रोहिणी पुत्र बलराम को अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा हार कर भगवान श्री कृष्ण ने सीतामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया। भद्रासन ने विषभ को तथा परम्ब ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया। तात्पर्य कोई वह प्रश्न कर सकता है कि भगवान को अपने मित्र किस तरह भरा सकते हैं। इसका उत्तर है कि ईश्वर अपने मूल रूप में अत्यंत खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं और कभी कभी अपने प्रिय मित्रों की इच्छा या बल का समय को झुक कर आनंद लूटते हैं। कभी कभी पिता अपने छोटे से प्रिय पुत्र द्वारा प्रहार किए जाने पर खेल खेल में जमीन पर गिर सकता है। स्नेह भरे इन कार्यों से सारे लोग को आनंद प्राप्त होता है। इस तरह सीतामा अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके कंधे पर चढ़ने के लिए राजी हो गए। चैतन्य चरितामृत आदिलीला चतुर्थ परिच्छेद। वहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति, समस्त जगत है ऐश्वर्य मिश्रित। पूरा जगत सब भगवान को भगवान समझ करके भक्ति करते हैं। किसी ने परम प्रेमास्पद वस्तु जो भगवान है, इस भाव लेके जगतवासी कभी भी भगवान का भजन नहीं करते हैं। जब तक महाप्रभु नहीं आए थे तब तक दक्षिण भारत में ज़्यादातर विष्णु भक्त का समावेश है और सब ने नारायण स्वरूप को ही पूजा करते हैं। जब तक ऐश्वर्य भाव में भजन होगा तब तक भगवान प्रीति नहीं होता है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीति, ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रेमे तह जगत मिश्रित। साधारणतः ऐश्वर्य भाव से जैसे पुत्र अगर सदा सर्वदा पिताजी के सामने सम्मान पूर्वक खड़ा रहे तो स्नेह पिता और पुत्र का है, वो कभी विकसित नहीं होगा। जैसे कोई प्रधानमंत्री अगर हो गया और उनका लड़का, लेकिन उनका लड़का के लिए पिताजी है, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, लेकिन वो अगर सोचे नहीं हमारा पिता प्रधानमंत्री है, हम कैसे बात करूँ क्या करूँ, दुनिया भर का लोग इतना सिक्योरिटी है तो कैसे चलेगा। इस भावधारा के द्वारा पिता पुत्र में स्नेह है वो नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा जो ऐश्वर्य प्रेम से मैं कभी प्रीति नहीं होता हूँ। तब उन्होंने इस जगत में आविर्भूत होकर के कृष्णेर जतक लीला तार मध्य नर लीला सर्वोत्तम सेवार आधार, कृष्ण का जितना सारे लीला है, चाहे अवतार बोली उसमें राम कृष्ण और महाप्रभु ये तीनों का नरलीला है, बाकी सब देवलील है। और देवलील में देवता को एक ज्ञात होता है ये भगवान आया हुआ है। जब वराह अवतार भगवान का नासाक से जय श्री गुरु राम भगवान का नासा से प्रकट हुए तभी लोग समझ गया ये भगवान है, लोग ऋषि मुनि इत्यादि सब स्तुति करने लगा। इस प्रकार वामन देव यद्यपि देव रूप में आने के बाद देवता लोग वामन देव को भगवान रूप में समझे थे, मैं साधारण मनुष्य रूप में नहीं समझा। लेकिन रामलीला में व कृष्ण लीला व गौर लीला में सब लोग भगवान को मनुष्य बोते, आचरण का भगवान को मनुष्य समझ के रखा। कुछ इन गिने चुने व्यक्ति भगवान को समझ पाया, बजानते थे कि भगवान है, फिर भी वो लोग भगवान का भगवत्व का जानते हुए प्रकाश नहीं किया था, चुपचाप रहे थे, जानते हुए भी लेकिन स्तव स्तुति में भगवान का भगवत भाव का स्तुति किया था। लेकिन जगत का सामने उन्होंने अपने आप को प्रकाशित तो नहीं किया, और भक्त लोग भी ज़्यादातर उनको प्रकाश करने में इतना रुचि नहीं लिया। तब उन्होंने महाप्रभु रूप में जब आए तो महाप्रभु रूप में आकर के उन्होंने जगत को समझाया कि कृष्ण भगवान है ये सब। उनका बाद उनका जो चरित्र लिखने वाला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु, उन्होंने भक्ति का जो महाप्रभु ने आस्वादन किया था, भक्ति क्या वस्तु है, उस वस्तु को समझाने के लिए उन्होंने चैतन्य चरित्र रूप ग्रंथ का रचना किया। और वहाँ वो दिखाया सखामोर शुद्ध भक्ति करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो आमी तुम्ही सम। सखालोक शुद्ध भक्ति किस प्रकार इन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में लिखा है कि ये जो गोपालक लोग ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसका वजह से भगवान श्रीहरि उनका साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा है, कि तो पुण्य पुंजा जहाँ पर कृष्ण शयन किए हुए हैं और बाकी सखा लोग कोई आम का पता से कोई इससे उनको बदास्त कर रहे हैं, वहाँ पर कि तो पुण्य पुंजा करके लास्ट लाइन में है, जिसे कौन सा पुण्य कर्म किया था जिस पुण्य कर्म के प्रभाव से आज ये लोग जो पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वयं भगवान हैं उनका साथ इस प्रकार खिलाधूला कर रहे हैं। तो यहीं इसका प्रचार महाप्रभु आकर के किया, और जो सखा लोग का जो भाव था कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुखामोर शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो आमी तुम्ही सम। जब कोई एक साथ में खेलता है, खेलने का समय, ये बड़ा घर का लड़का है, ये छोटा घर का लड़का है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहता है। 5 साल का पीछे जाना पड़ेगा, 5 साल का बाद भेदभाव हो जाता है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं होता है। सब आपस में मारा पीट खेलते रहता है, वो कभी ये नहीं बोलता तुम हमसे बड़ा घर में है, तुम हमसे बड़ा है, हम छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस प्रकार भगवान का जो सखा लोग है उनका ही मनोभाव वही है कि तुम कौन सा बड़ा हो गया, हम भी तो हमारे साथ तुम तो खेल रहे हो ना, तो तुम और हम समान है। इसलिए उन लोग विचारधारा में एक खेल के पराजित होने से जो हारेगा उसको हम ढूंढेगा, जो जीतेगा उसको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा लीला विलास भगवान का चलता है। इस सखा में सखा, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, ऐसे कर बहुत सारे भेद हैं। और सखा में भी चेट विदूषक ऐसा और उसका भाग है कि इस प्रकार जिसका जो जितना अधिकार भूत है वो उसी नर्म में लगते हैं कि खेलते हैं। जैसे कॉलेज का अगर कोई दोस्त बन जाए तो कॉलेज में सब कोई दोस्त होता है, लेकिन सबका साथ सबका वार्तालाप नहीं होता है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वार्तालाप करता है। उसी पर भगवान में इतना सारे सखाए हैं, उनका भी ग्रुप डिवाइडेड किया गया है, सब अपना अपना स्वभाव का अनुरूप भगवान का सेवा करते हैं। ये भगवान का भगवत्ता होते हुए कृष्णेर जतक लीला, कृष्णेर जतक खेला तार मध्य नर लीला, नर बपु नर आचरण। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने नर बपु हमारी जैसे बपु धारण किया था, ऐसा नहीं सो विलक्षण था, मनुष्य जैसे बपु धारण करते भी उन्होंने नरवत लीला किया था। नहीं तो कोई भगवान अभी कभी देखा जाता है कि नृसिंहदेव आकर के मिट्टी खेला है, वामन देव आकर के मिट्टी खेला, कभी कुछ दिन मिलता है भगवान कूर्मदेव आकर के ऐसा ऐसा क्या कुछ नहीं मिलता है, खाली गौर राम और अपना कृष्ण ये तीनों का लीला में खेला धुला में जो है मनुष्यवत आचरण है। इसलिए साधारण तो जीव सब इस मनुष्यवत लीला में आकृष्ट होकर के इनका ही भजना करता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ का लीला का अवतारण किया है उनका उद्देश्य प्रलंब बोध, क्योंकि अभी तो कृष्ण का लीला का वर्णन किया, बलराम का लीला का सूचना कर रहे हैं कि इस प्रकार बलम्ब प्रलंब प्रलंब कैसे बोध होगा। तो भगवान ने अपना युक्ति करके ये आचरण करके सबका साथ ऐसा खेल के इस प्रकार व्यवहार किया, प्रलंब ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया अपना कंधा में लेकर के। बोला कृष्ण का साथ तो बहुत सारे असुर का युद्ध हुआ, तो इतना सारे असुर को तो कृष्ण मार दिया, बलराम का अभी तो कोई कीर्ति तो नहीं हुआ है, अरे बलराम को ले जाकर मैं अगर मारूं तो कृष्ण को मारना हमारे लिए आसान होगा। दुष्ट बुद्धि, तो दुष्ट बुद्धि व्यक्ति सदा सर्वदा दुष्टता ही समझ में आता है उनको, वो सोचते हैं कि अगर इनको परेशानी में डाल दिया जाए तो बाकी लोग को तो आसानी से हम जीत सकते हैं, लेकिन होता है उल्टा। कि भगवान सदा सर्वदा शिष्टों का पालन करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। तो आज का दिन क्या है, महाप्रभु का संन्यास लिया। महाप्रभु संन्यास क्यों लिया था, एक जगह में इन्होंने लिखा है किलागी देखो देखो जीव गौरांग चांदेर लीला, किलागी सन्यासी होइला। शत शत गोपी नयने भुलाइया किलागी सन्यासी होइला, देखो देखो जीव गौरांग चांदेर लीला। महाप्रभु का जीवोद्धार लीला, जब गया यात्रा से आने के बाद महाप्रभु ने अपना प्रेम भक्ति को प्रकाश किया तो सदा सर्वदा गोपी गोपी नाम उच्चारण करते थे। उस समय कोई पढ़ुआ आकर के उनको कहा पंडित जी कृष्ण का नाम उच्चारण कीजिए, गोपी गोपी नाम उच्चारण क्यों कर रहे हैं? तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण शॉर्ट है, धूर्त है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं गोपी का नाम उच्चारण कर रहा हूँ। तो फिर जब दोबारा रिपीट किया तो महाप्रभु निवाय पंडित क्रोधित हो गया और उसको डांडा लेके मारने के लिए गया। तो वो भागने लगा और महाप्रभु पीछे पीछे गया। तो कुछ दूर जाने के बाद महाप्रभु जब लौट के आए, श्रीवास पंडित उसको डांडा को हाथ से हटाया। तो वहाँ जाकर पुरुआ समाज जाकर के इन्होंने जा कहा, वो भी तो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है, कौन सा बड़ा घर का लड़का है, हम कौन सा छोटा बाप का बेटा हूँ, हमारा बाप भी बड़ा है और उनका साथ में तो हम लोग एक साथ में पढ़ाई किया, वो कौन सा बड़ा हो गया, उसको मैं कृष्ण उपदेश गया, उन्होंने हमको मारने के लिए आया, अगर दोबारा आए तो हम लोग सब मिलकर उसको मारेंगे। ये पूरा पढ़ुआ समाज में मीटिंग किया, हिस्टोगोष्ठी किया। आज जैसे ऐसा उन लोग कहा वैसा जो कुछ भी वो लोग पढ़ा था सब कुछ भूल गया। महाजन बा भगवत चरण अपराध का फल इतना बड़ा हो जाता है, सबका विद्या लुप्त हो गया। महाप्रभु ने देखा आनिलु पिप्पल खंड कप निवारित, जिसका सर्दी हुआ वो पिप्पल खंड, पिप्पल मतलब सूट का पाउडर का होनी डाल के चाटोगे तो सर्दी चला जाएगा, ये दवाई है। अनिलु पिप्पल खंड कप निवारित, उलोटिया बाढ़े कप नहीं निवारण है, लेकिन उल्टा हो गया, क्या हो गया, कप दोबारा उनका ज्यादा वृद्धि हो गया। बोला मैंने जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं, आज जगत अगर मेरा चरण में अपराध करे तो जगत उद्धार किसे होगा? तो भगवत चरण में अगर अपराध हो तो कभी भी भक्ति लाभ नहीं हो सकता है। अपराध का श्रेणीभूत बहुत है, एक नामापराध है, एक सेवा अपराध है, एक भगवत चरण अपराध है, एक भक्ति चरण में अपराध है, धाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, क्या क्या अपराध का पूरा खजाना निकल जाएगा ढूंढते जाओगे तो। इसलिए महाप्रभु ने कहा अगर हम हमारा पास हमारा ही चरण में लोग अपराध करें, इनको तो मालूम नहीं भगवान हूँ, लेकिन मुझे तो कम से कम ज्ञान है मैं भगवान हूँ, इसलिए मेरे वजह से इनका अपराध क्यों हो। गोरियो धारा में जितना सारे भक्त हैं उनको ये सोचना चाहिए सभी समय, जो हमारा वजह से कोई व्यक्ति अपराध ना किया करे, क्योंकि गंगाम भसांग खुलुबित फैन पंकुर ब्रह्म देवत्तम अपगछंत निरधर्म। गंगा में अगर कीचड़ भी बहे तो फिर भी उस पानी में अगर डुबकी लगाओगे तो पवित्र करेगा, कि ब्रह्म दव धर्म गंगा में सदा सर्वदा मिश्रित है। तो भक्त उनका कोई आचरण कर्म मार्ग आचरण से अगर अलग होता भी है, भक्ति मार्ग आचरण से अगर अलग होता भी है, तो वो देख करके हमें कभी भी उपहास पकड़ो उसको, सिर में कुछ रखो, सिर के नीचे कुछ रखो, सिर नीचे नहीं होना चाहिए। और चटाई कुछ इकट्ठा करके गोल कर दो, पानी मत दो, पानी देना अच्छा नहीं है। चलो तो भगवत चरण में अपराध होने के नाते भक्ति लाभ नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रणामम दुख समनवस्तु तंग नमामी हरि परम। भगवान का प्रणाम करने से व्यक्ति का अपराध नष्ट हो जाता है, दुर्भिद हो जाता है। इसलिए मंदिर आने के बाद सबको भगवान को दंडवत प्रणाम करना आवश्यक है। तो महाप्रभु ने जब देखा ये लोग ऐसा कर रहा है तो हमें प्रणाम कैसे करेगा, तो उन्होंने सोचा सन्यासी का जो मनुष्य का जो चतुर्थ आश्रम सन्यास है, सन्यास बुद्धि के मोरे करिवे नमस्कार, जो सन्यास हम लूंगा तो उस बुद्धि से लोग क्या करे भाई सन्यासी। अभी सन्यासी कोई शत्रु भी नहीं होता, कोई मित्र भी नहीं होता है, सन्यासी सब पर समभाव है। और मनुष्य भी ये सोचता है अगर कोई गलत कार्य करने के बाद अगर सन्यास भी लिया है तो लोग क्या सोचो अरे तो सन्यास ले इसको और कुछ बोलने का नहीं तो सब जाकर पार हो गया, चलो इसको प्रणाम करो। अगर चोर भी सन्यास होता है फिर भी साधु जान उस चोर को भी प्रणाम करता है, किस लिए करता है, कोई सन्यास है। तो सन्यास का मतलब क्या है, समस्त विषय से परे। अगर सन्यास लेने के बाद भी किसी का विषय में आसक्त व भेदभाव दर्शन हो तो उन व्यक्ति को सन्यास को भी नहीं लेना चाहिए। कि सन्यासी में कोई भेदभाव नहीं है, सन्यासी में सब समान है, उसका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, कोई नहीं। तो सन्यास बुद्धि के मोरे करिवे नमस्कार, सन्यास बुद्धि के द्वारा अगर मुझे प्रणाम करे तो जैसे मुझे प्रणाम करेगा इसका अपराध क्षय होगा और मैं इसको भक्ति दे सकता हूँ। ये सोच करके जब महाप्रभु ने बोला अभी हमको सन्यास लेना पड़ेगा, तो अपना पर सब भक्तों का सामने अपना प्रस्ताव बना रखा, सबका हाथ दो चार दिन रुको बाद में लो। लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद 24 साल का शेष पूर्णिमा जो आता है उनका बाद जब 24 साल पूरा हो गया, गौर पूर्णिमा पूर्णिमा में जन्म हुआ था महाप्रभु का, और पूर्णिमा का समय जब 24 साल पूर्ण उसका बाद जो आता है उसमें महाप्रभु का सन्यास लिया है। आज का तिथि है नवमी, कृष्ण नवमी, ये जो पूर्णिमा गया इस पूर्णिमा के बाद जो नवमी थी इसमें महाप्रभु का ने सन्यास लीला का आविष्कार किया। उन्हें सन्यास लेने के बाद सन्यास रात्रि के समय में बहुत सारे भक्त उनके पास आ रहे, पूरा नवद्वीप माला और उपायन लेके आते हैं, तो महाप्रभु सबको एक ही कहते हैं सब कृष्ण भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप घरे गिया कोरिया निर्बंध, इहा हईते सर्वसिद्धि हई बेसवार, सर्वक्षण बल इथे विधि नाही आर। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, इतना ही निर्बंध, इतना ही इसमें निर्बंध क्रिया, निर्बंध संख्या पूर्वक कीर्तन असंख्यात, जप संख्यात, जप असंख्यात नहीं होगा। आज 15 किया, कल 22 किया, परसों 44 किया, फिर दूसरा दिन 4 माला कर दिया, आज हमारे पास बहुत टाइम है, आज हम 64 कर लेंगे, कल हमारे पास टाइम नहीं, कल हम 10 माला करेंगे, इसमें इस प्रकार नाम जप करने से प्रेम लाभ नहीं होगा। हाँ विशिष्ट तिथि अलग बात है, जैसे एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, इस दिन लाखों करो, 2 लाख करो, 5 लाख करो, 10 लाख करो, इसमें कुछ नहीं है, बाकी दिन आप 16 करो सही है। लेकिन मनमर्जी से आज कुछ दिन आज हमारे पास समय है ज़्यादा जप करेंगे, कल समय नहीं कल कम करेंगे, इस प्रकार जप का विधि दिया हुआ नहीं है। इसलिए कहते हैं कोरिया निर्बंध, निर्बंध सहकार में जप करो, अगर आज का जप बाकी है तो कल पूरा करो, ये नहीं काल का जब हम आज हमारा समय है काल के लिए जब आज हम करके रख देंगे, ऐसे नहीं, जैसे होता है ना इधर 7 दिन का मसाला पीस के फ्रिज में डाल देता है, चलो 7 दिन खाओ, तो 7 दिन का कुकिंग करके फ्रिज में डाल देना चाहिए, गर्म को भाप करके दे देना चाहिए, रोज कुकिंग करने क्या जरूरी है, कौन समझाएगा इसको, ये विचारधारा है। जो भी है महाप्रभु ने अपना सबको दिया उपदेश, और इतने अवसर में खुला बचा सिधर एक लौकी लेकर आया दूधी, महाप्रभु ने देखा अभी सिधर का दूधी अगर ये नहीं खाऊं तो कैसे चलेगा, इतने अवसर दूसरा कोई भक्त कोई आके नवद्वीपवासी लाके दूध लेके आया। तो दूध और लौकी, छोटी माँ को बोला मामी कुकिंग करो, दूध लौकी कुकिंग करो, मरीच का ढाल झाल डाल के, हरा मिर्ची नहीं, मरीच गुल मरीच, काला मिर्च ना ब्लैक पेपर, वो डाल के बनाओ इसको। महाप्रभु उसको खा करके, छोटी माँ को मालूम है पहले ही बोल दिया था मैं संन्यास लूँगा बोल के, तो महाप्रभु काटवा में जाके निमाई नापित का नाम था मधु नापित, उनसे जाकर केशव भारती से संन्यास लिया। इसका बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर का लेक्चर बोलूँगा, उन्होंने क्या बोला। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी में आए, पुरी से संन्यास लेके अलालनाथ में आए। तो अलालनाथ क्या है, डबल संन्यास। पुरी पहला संन्यास फास्ट, डबल संन्यास अलालनाथ। चतुर्भुज वस्तु अधोक्षज है, भगवत सेवा विमुख होकर के हम लोग का जो इंद्रिया है, इस इंद्रिया के द्वारा हम लोग का विषय भोग में ज़्यादा प्रयोजन बुद्धि होता है, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवत सेवा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसमें किसी का कोई विचार नहीं होता है। मैं कौन हूँ जो ये नहीं जानता है, उस व्यक्ति का आत्म परीक्षण नहीं हुआ। मैं पढ़ा तक जाएगा, मैं एक लिखता, जब तक अन्य चिंता रहेगा तब तक अनन्य चिंता नहीं हो सकता है। संसार चिंता जिसका होगा वो कभी भगवत चिंता नहीं कर सकता है। आज जो भगवत चिंता करेगा उसका संसार चिंता नहीं हो सकता है, ये ख्याल रखो। बहुत सुंदर कोई आचार्य का वाणी है, जे व्यक्ति अपना बाह्य इंद्रिय के द्वारा ज्ञान संग्रह करता है वो सब विकृत ज्ञान है। आप विकृत ज्ञान में वंचित होना पड़ता है। जो बहिर्मुख इंद्रिय है वो जो इंद्रियों का मालिक है उनको धोखा देता है। बहिर्मुख इंद्रिय, इंद्रियों का मालिक कौन है? अगर मेरा इंद्रियों का मालिक मैं हूँ तो मैं कौन हूँ ना, आत्मा हूँ। तो हमारा इंद्रियों क्या करता है, बहिर्मुख होने के नाते हमें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो असल चीज हमें करना है करने नहीं देता है। चेतन का रियल यूज कैसे हो सकता है, चेतन जो अचित पिंड जो जड़ वस्तु को, जड़ वस्तु के द्वारा चेतन को रूप दिया गया है। जब तक चेतन वस्तु चीज इंद्रियों के द्वारा व अप्राकृत वस्तु पर आकृष्ट नहीं होता है, तब तक जड़ इंद्रियों के द्वारा वो वशीभूत होते रहेगा। यद्यपि चेतन वस्तु एक इलेक्ट्रिक पावर जैसे हैं, फिर भी उनका अविच्छिन्नता कॉन्टिन्यूटी लक्ष्य नहीं होता है। जब तक बहिर्थ मानिन बा गृहवत रहेंगे तब तक हिषिकेश सेवन उपलब्धि नहीं होगा। जब तक बहिर्थ मानिन बा गृहवत, गृहपद मतलब ये अपना गृहपद से दो अर्थ है, एक गृहस्थ का गृहव्रत और एक संन्यास का गृहव्रत। बोले संन्यास का गृहव्रत कैसे हैं, सदा सर्वदा अपना बारे में सोचना गृहव्रत होता है, और सदा सर्वदा भगवत बारे में सोचना ही भगवत व्रत होता है। तो जब तक ऐसा रहेगा तब तक इंद्रिय के द्वारा भगवान का सेवा नहीं हो सकता है। दुष्ट आशा का वशवर्ती होकर के हमें ये मालूम पर हमारा इस प्रकार मनोभाव हो गया इस जगत में हमें करने के लिए बहुत कुछ है। लोग कर रहे हैं ना अभी, लोग क्या सोचते हैं जी हम इस जगत में जब आए हैं तो इस जगत में करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ओरिजिनल फाउंटेन हेड क्या मतलब, इससे हम लोग दूर हो गया है और ये असद बुद्धि हमारा हो चुका है। जिस प्रकार चोरा बाली और उसमें पाव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे घुस जाएंगे। मरुभूमि में उसको हिंदी क्या मालूम नहीं, चोरा बाली बोल के जाएगा, जहाँ पर दलदल आपको रेत जैसा ही है, दलदल तो पानी रखोगे पानी बिल्कुल रेत जैसा ही है, जैसे उसके ऊपर आप पाव रखोगे आप धीरे धीरे अंदर घुसते जाओगे बाहर निकाल नहीं पाओगे। ऐसे उस प्रकार हम लोग क्या किया, इस जगत में आकर के जगत कार्यों में अपना पाव को डाल दिया और इसे हम लोग घुसते जा रहे हैं बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। दुष्ट विषय संसर्ग के द्वारा अंतर्मुख ना होकर के हम लोग अपना समय फालतू व्यय कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, अंधा जथेन्द्र उपमेव मानस्ते अपिस्तंत्रा मृदाम्नि बद्धा, जिनका दर्शन मनुष्य को तकलीफ देने के लिए व्यस्त है, अगर उस प्रकार व्यक्ति का दर्शन हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारा अमंगल ही होगा। जो व्यक्ति आपात सुख के लिए प्रणोदित है उनके द्वारा कभी भी मंगल उपदेश नहीं हो सकता है। ये देहात्म बोध व गृहव्रत बुद्धि के द्वारा बैड क्वेश्चन का प्राबल्य जगत में आ चुका है। तिपिश तंत्र मुरुदामने बद्ध, भगवान एखाने भगवान यहां पर आकर के माया के द्वारा दो प्रकार खिस्तान करके रखा, एक विष्णु माया और एक जड़ माया, दोनों तरफ व्यक्ति को बांध के रखा है। जब विष्णु माया होता है तब भक्ति का भाव भक्त का संग करता है, जड़ माया जब होता है तो भौतिक जगत में भौतिक व्यक्ति का संग करता है। कभी कभी एक कर्मवीर से अवसाद ग्रस्त होने के बाद ब्रह्मवाद होकर पड़ता है। हमें सदा सर्वदा सावधान होना चाहिए और जितना पाद हम आगे चलते रहेंगे सदा सर्वदा गुरुपाद पद्म का अनुगत्य जरूरी है। दृश्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्संते कही दैरता प्रकाशंते महात्मनः। हम लोग अधोकोल सेवा त्याग करके अक्षज इंद्रियो ताड़ित होकर के उनका सेवा में अगर कपट करूं तब सेवक कहाँ हो गया। अगर अधोकोल सेवा का नाम लेकर के अगर कपट धर्म हृदय में रखे तो हम लोग सेवक कहाँ हुआ, हम लोग तो अहंकारी हो गया, बहिर जगत का चिंतारसत में डूब के रहा। इस दर्शन से मुक्त होना आवश्यक है और इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और भगवत सेवा के लिए अनुकूल क्षेत्र में निवास करना आवश्यक है। दूसरा का उपदेश के द्वारा पंडित बन करके जगत का लोक को जो अमंगल उत्पादन किया जाता है वो लोग क्या कहते हैं, आप भी तो हमारे जैसे ही है, क्योंकि बोलते हैं ना क्या प्रभु जी आप तो हमारे जैसे ही है, क्योंकि हमारा आचरण देखते हैं वो, और हमारा आचरण देखने के बाद वो हमें मजाक मजाक में बोल देता है क्या प्रभु आप भी तो ऐसे ही है। इसलिए वो लोग हम लोग का साथ में आके बंधुत्व करता है, इसलिए आता है, यहाँ डायरेक्ट लिखा है गलत मत समझना, पेट पूजा करने के लिए, इसलिए वो लोग हमारा साथ दोस्ती करता है। लेकिन हमारा विचार ऐसे नहीं होना चाहिए। सकल जीव स्ववृत्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। स्ववृत्ति दो शब्द दिया है, एक स का नीचे ब है और एक तालब्य स का नीचे ब है। स्वृत्ति का शब्द अर्थ है भक्ति और स्वृत्ति का अर्थ है कुत्ता। उच्चारण दोनों का एक ही है, जैसे हेयर और हेयर है ना, बाल और खरगोश, उसका दोनों का ये बांग्ला शब्द है। या सकल जीव स्वृत्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए, सब जीव को भक्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए, न कि स्वृत्ति में, न कि कुत्ता वृत्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये दो शब्द है। जोगीपाल महीपाल उनका मुंह में सदा सर्वदा पुंडरी गोविंद इत्यादि नाम उच्चारण दैहिक शुद्धि व पाप विनाश के लिए जो व्यक्ति अपना धर्म कर्म समझते हैं उन सब का विचार परित्याग करके जो व्यक्ति हरिभजन करता है उन सब शिवासादि भक्त का ऊपर हरि कीर्तन का भार अर्पण करके महाप्रभु सन्यास लेके जगन्नाथपुरी में आए। नवद्वीप वासी बहुत सारे बड़ा बड़ा पंडित लोग था, सब पंडित को दिया देगा तुम्हें हरिभजन प्रचार करना, ब्रेदो गोविंद पुंडरिक का नाम उच्चार है लेकिन ये पेट पूजा करने के लिए, दूसरा कोई कार्य नहीं इसका, भक्ति करने के लिए गोविंद नाम उच्चारण नहीं करता है। तो इनको अगर हम प्रचार कार्य देके जाए तो जगत का अमंगल होगा, इसलिए शिवाशक्ति पंडित जो भक्त लोग उनको देके आया। पुरुषोत्तम धाम पार्सोनल गॉडहेड क्षेत्र, यहाँ पर लीला पुरुषोत्तम का अर्चा मूर्ति सदा सर्वदा विराजित तो है। क्लिप ब्रह्म का क्षेत्र है काशी, क्लिप मतलब क्या बोलते इसको, जहां पर कुछ भी नहीं है, न स्त्री न पुरुष, उसको क्लिपो कहते हैं, बा स्त्रीलिंग पुलिंग और क्लिपोलिंग, त्रिलिंग होता है ना, एक लिंग है जो क्या कहते हैं, वो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है, उसको क्लिपो कहते हैं। अरे क्लिपो शब्द का अर्थ होता है जो ब्रह्म है जिसको कुछ भी नहीं है उसको क्लिप कहते हैं। तो काशी होता है क्लिप ब्रह्म का क्षेत्र। तो काशी भुवनेश्वर वो दोनों जगह ताक करके महाप्रभु पुरुषोत्तम में आए और वहाँ से अलवारनाथ व अलारनाथ गया। अलारनाथ क्या है, वहाँ पर भगवत पार्षद लोग का निवास स्थान है। अलवारगण, अलवार शब्द अर्थ भक्त, उनका आराध्य वस्तु का क्षेत्र, शुद्ध वैष्णव का नित्य उपास्य क्षेत्र, लीला पुरुषोत्तम जी उनका भित्तगण का संपत्ति है, ये उन्होंने आके प्रचार किया। विष्णु का स्थान से वैष्णव का स्थान श्रेष्ठ है। गुरु गृह में शुद्ध भजन का क्षेत्र अधिकतर अनुकूल है, जैसे पांजा का आता है ना साउथ इंडिया में माधवाचार्य का जन्मस्थान, तो भगवान का जन्म, भगवान का निवास स्थान से भक्त जहाँ पर जन्मस्थान है वो अधिकतर भक्ति अनुकूल है। ठाकुर भक्ति विनोद अपना भाषा में लिखा है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जथाय वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। अलवारनाथ का व अलारनाथ का जो मंदिर है उसका मंदिर का प्राचीर में जो शुद्ध भक्त लोग थे उनका नाम लिख देना चाहिए। कोली का समय में शुद्ध भक्त लोग अलग अलग जगह से आकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ है। यहाँ पर कौन सा अलारनाथ विराजित तो है, यहाँ पर वो हम लोग इसका स्रोत पंथा में प्राप्त तो नहीं हुआ है। यहाँ पर जो अलारनाथ है वो चतुर्भुज रूम में शक्ति तत्व को साथ में लेकर के विराजित तो है। अलारनाथ में श्री भू और लीला ये तीन शक्ति है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इनका अलग नाम दिया है। अलारनाथ सशक्तिक पुरुषोत्तम का विचार है, मानव जाति को क्लिब ब्रह्मों से उद्धार करके या ब्रह्मवाद गस्त्र से उद्धार करके महाप्रभु तत्व वस्तु सच्चिदानंद विग्रह पुरुषोत्तम तत्व का विचार प्रदर्शन किए हैं। और अनवसर समय में पुरुषोत्तम वाद का विचार ताक करके सशक्तिक लक्ष्मी नारायण का विचार के लिए अलारनाथ में आए। उनका ऊर्ध्व श्री राधा गोविंद का सेवा करने के लिए अपना लीला प्रकाश किए थे। ये जो स्थान है, स्थान षष्ठ कोष का विचार है, पंचम कोष का स्थान पुरुषोत्तम है, चतुर्थ कोष का स्थान भुवनेश्वर है। श्री राधा गोविंद का पाद पद्म सेवा से बड़ा कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उदुको सेवा वंचित होकर के जाते हम लोग मायावादी व क्लिपवादी व ब्रह्मवादी ना हो जाए, इसलिए सदा सर्वदा हरिकथा का श्रवण करना चाहिए। शुद्ध सेवा करना कर्म मार्गीय विचार है, वो अलग अलग मनोधर्म का विचार रहता है। हरि भजन का ऊपर दृष्टि रखना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कार्यों में बहुत सारे जन्म बीत चुका है, इसलिए इस जन्म में सर्वश्रेष्ठ वस्तु जैसे लाभ है उस विषय में सतर्क रहना चाहिए। ये दैनिक नदिया प्रकाश, उनमें उनका लेक्चर था। तो महाप्रभु का संन्यास लेने का उद्देश्य जगत उद्धार, और अपने आचार्य धर्म जीवेरे सिखाए, अपने ना कोई धर्म सिखाना ना जाए, ये सिर में रखकर हमें सदा सर्वदा चलना चाहिए। जब तक खुद आचरण नहीं करेंगे तब तक उपदेश देना व्यर्थ है। कोई कहा बोलेगा ना प्रभु जी आप तो हमारे जैसे ही है, हमें खुद को बेइज्जत होना पड़ेगा। इसलिए साथ में कोई जाने वाला नहीं, ख्याल रखो, ये भी नहीं जाएगा साथ में, खुद को ही जाना पड़ेगा। अरे खुद को जाने के लिए खुद को तैयार होना पड़ेगा। उसमें अगर कोई साथ पकड़ता है तो विचार करके देखो वो साथी सही है कि रंग है, अगर सही है तो साथ लेके चलो, अगर सही नहीं है तो उसको वंचना करो। जैसे गौर कृष्णदास हमारे करते थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर आया उनको चरण धुले दिया, बाकी लोग जो चरण धुले था तेरा सत्यानाश हो जाए, एक ही शब्द लोग चरण धुले नहीं आता है। बोले ये तो साथ बाबा तो अभिशाप देने वाला है, मैं अपना सत्यानाश क्यों जाऊँ। उसको बुद्धि अगर वो बोले सत्यानाश हो फिर भी चरण धुले लेगा, हमारा सत्यानाश हो जाए, कौन सा सत्यानाश होगा, संसार का सत्यानाश हो जाएगा। तो लोग ने सोचा अरे सत्यानाश हो जाएगा, चलो बाबा जी को प्रणाम किया। बोलो बाबा जी बात किया बहिर्मुख संग से, तो बहिर्मुख व्यक्ति का साथ संग करके तो खुद को बहिर्मुख होना पड़ेगा, तो अंतर्मुख भक्त का साथ संग करेंगे तो अंतर्मुख होना पड़ेगा। इसलिए अपना गलती सब भी हो सकता है, गलती कर भी सकता है। जैसे अपना सौभरी मुनि, उन्होंने गलती करने का क्या बोला, अरे संसार गलत नहीं, फिर भी तो पहले संसार कर लिया ना, फिर अगर हम भी सोचो पहले हम भी संसार करेंगे फिर हम भी बोलेंगे संसार गलत है, ये रंग है। जजाति ने पुत्र का यौवन भोग करने के बाद क्या कहा था, ये जगत में जितना सारा स्त्री है पुरुष के लिए कम है, तो अगर हम भी सोचे पूरे हम भी दुनिया भर का स्त्री के साथ संग कर फिर हम भी कह देंगे। ये लोग महाजन हैं, ये लोग अपना आचरण के द्वारा जगत को सिखाया कि भाई जगत ऐसा है, ऐसा है, इस जगत में ज़्यादा पड़ो मत। तो इसका अगर पूर्व कर्म का आचरण देख करके अगर हम भी जो इन पहले में ऐसा था अभी हमको उपदेश दे रहा है, ये गलत है। पूर्व जन्म में पूर्व भक्ति ठाकुर का कल्याण नहीं, शरणगति में भजन भजन है। पूर्व इतिहास भूल न सकल सेवा सुख पे मैंने, आमी तो तुम्हार तुम्हें तो हमार टीका जो अपराधने। पूर्व रत्नाकर ने दस्यु था, बाद में वाल्मीकि बना, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसको काट दिया, बोले ऐसा कोई लिखावट आज तक तो मिला नहीं, ये फालतू है, इसे कहा। उनका लेक्चर था मेरे पास में पढ़ा है, अभी बुक ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। बोले ऐसे कुछ नहीं है, जे रत्नाकर था फिर वाल्मीकि हुआ, ऐसे कुछ नहीं है। उन्होंने इस प्रकार लिखा जो भी है आचार्य जो लिखा है। तो पूर्व इतिहास भूल न सकल सेवा सुख पे मने, तुम्हें तो हमार आमी तो तुम्हार टीका जो अपराध है। हम पूर्व में क्या किया नहीं किया वो सब का चक्कर में ना पड़ के प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं वो देखना आवश्यक है। अब प्रेजेंट में भी हम वही कर रहे हैं तो हम पूर्व और पूर्व में अंतर क्या रह गया ये सोचना जरूरी है। हमें उद्धार करना, हमें उद्धार होना पड़ेगा, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, हमारे विचार हमको ही सुनाना पड़ेगा, देखो ये सही है ये रंग है। दूसरा को उपदेश देके पांडित्य बुद्धि करने से पहले अपना उपदेश लेकर के अपना पांडित्य अपना पर हजम करना चाहिए, तभी जगत उद्धार हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता है। चलो हरे कृष्ण। गोविंद गोपाल जी करो।